होली एक पर्व मात्र नहीं बल्कि जीवन दर्शन भी है। होली के रंग तो एक दिन में उतर जाते हैं, क्या जीवन के रंगों का समावेश हमेशा के लिए नहीं कर लेना चाहिए? जाने अनजाने हम जीवन के रंगों को दरकिनार करते जाते हैं। पता नहीं क्यों हम चटकीले रंगों पर उदासीन रंगों को हावी होने देते हैं। क्यों ना उदासी के रंगों को धोकर मुस्कुराहटों के रंग में खुद को डुबोया जाए। सच में दोस्तों, अगर हम ऐसा कर पाए तो जीवन जीने का तरीका, उसके मायने कुछ और ही हो जाएंगे। शायद हम रंगों की वो लकीर भी छोड़ जाएं जो हमारे पीछे भी हमारी तस्वीर उकेरती रहेगी। आइए होली के रंगों को मात्र एक पर्व नहीं जीवन की संस्कृति बनाएं। आज के इस रंग भरे पावन पर्व पर हम जिन्हें अपने कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं वे हैं निसार वारिस साहब। आपके पिता अब्दुल रज्जाक साहब देश के जाने माने कव्वाल थे और निसार वारिस खुद भी एक उम्दा गायक हैं। तो चलिए दोस्तों, निसार वारिस जी के साथ एक संवाद करते हैं और मेरे साथ ही उनसे बातचीत करने के लिए लोकप्रिय कवित्री शबिस्ता ब्रिजेश जी भी होंगी।
नमस्ते शबिस्ता जी।
नमस्कार भावना जी।
शबिस्ता जी, जब भी आप चुपन पर आती हैं तो हम सबके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है, जोश भर देती हैं हम सब में।
और आज भक्ति के लिए भावना जी क्या है?
आज जैसा कि शबिस्ता जी हमारे भी चर्चा हो चुकी है, हम लोग संगीत की एक लोकप्रिय विधा कव्वाली पर चर्चा करेंगे और इसका इतिहास तो 700 साल पुराना है और हमारे देश के सूफी संतों ने कव्वाली को लोकप्रिय भी बनाया, लेकिन आज इसका स्वरूप उस रूप में नहीं रहा जैसा पहले था, बल्कि कव्वाली आज तो इस तरह से गाई जाती है कि उसे सुनकर सुकून मिलना तो दूर एक दर्द एक टीस का अनुभव होने लगता है।
जी जी, अश्लीलता भी बहुत आ गई है कव्वाली में भावना जी। हाँ, इस बात को भी ध्यान रखा जाए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए।
जी जी, तो इसीलिए हम लोगों ने जैसा उस दिन बात भी की थी, हम लोग आज उस कलाकार को आमंत्रित कर रहे हैं जो स्वयं तो एक गायक है ही और मशहूर बॉलीवुड संगीत निर्देशक रविंद्र जैन जी के साथ उनको काम करने का अवसर मिला और उनसे ही आपने संगीत की शिक्षा भी ली, और दूसरी तरफ आपके पिता अब्दुल रज्जाक साहब जो है वो मशहूर कव्वाल थे जिनका नाम हम सब जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध थे वो, उनकी कव्वालियां भी बहुत प्रसिद्ध हुई। तो चला जाए, निसार वारिस साहब को बुलाया जाए अपने चुपन के पटल पर। शबिस्ता जी
बिल्कुल बिल्कुल
है ना। नमस्ते निसार भाई।
निसार भाई ये आदाब बढ़ रहे आपको,
चुपन के पटल
पर आपका स्वागत है।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब।
आदाब निसार भाई, और कैसे हैं आप?
जी बस दुआ है आपकी, दुआ है।
चलिए, आप हमारे चुभन के पटल पर आ जाए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं और शबिस्ता जी आपसे हम करना चाहेंगे आज। निसार भाई, हम आपसे आपके पिता अब्दुल रज्जाक साहब के साथ आपके बीते पलों के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। बताएं आप।
हाँ, तो मेरे वालिद अब्दुल रज्जाक कव्वाल साहब इसी रायबरेली के थे और वो अपने कजनों के साथ में उस ड्रामा कंपनी में जाया करते थे।
जी,
उस जमाने ड्रामा नौटंकी जिसको बोलते हैं, नाटक कंपनी, जिसमें उस जमाने में यहाँ हमारे रायबरेली में बदलू एंड कंपनी उस जमाने में चला करती थी, उसी में सारे लोग काम किया करते थे। हमारे कजन तो हमारे पिता श्री भी उसमें जाया करते थे।
जी,
तो उस वक्त तो थोड़ा सा उनको गायकी का शौक पैदा हुआ और कुछ उन्होंने गायकी सीखी और सीखने के बाद में सब उसकी एबीसीडी वगैरह, और उसके बाद वो चले गए बनारस।
जी,
और बनारस चले गए जिस जमाने में एमपी मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर के पिता श्री दीनानाथ मंगेशकर जो नाटक कंपनी वो लोग जमाने में हुई एमपी में चला करती थी, उसमें भी आपने पेपर में सुना होगा टीवी की लता जी भी अपने पिता श्री जी का हेल्प किया करती थी।
जी
हाँ, तो उसी पीरियड हमारे वाली साहब बनारस रायबरेली से बनारस चले गए और चांदपुतली कव्वाल जो एक बहुत मशहूर जो थे हिंदुस्तान में, उनका बहुत एक नाम था, उन्होंने अपना जो है सीता वनवास भी गाया और कई गुलरी के फुलवा, गंगा जी का पनिया, हलोर मारेला और कव्वाली सरकार मदीना, मतलब कहने का मतलब है कि जो उनकी कव्वालियाँ थी वो गंगा जमुना तहजीब को लेकर और एक समाज को दिशा की तरफ ले जाने का काम करती थी।
जी जी।
तो उसके बाद में मेरे वालिद साहब करीब 35 से 40 साल लगभग वो बनारस में थे, उसके बाद में वतन की मोहब्बत में जब इसका क्रेज कम हुआ, और क्योंकि कव्वाली के जो समझदार लोग थे उस जमाने में उर्दू के ज्यादा जानने वाले थे, अब तो जो माहौल है वो कव्वाली नहीं बल्कि कव्वाली का एक रूप देख के जो है कि उसका एक मैं तो कहता हूँ कि उसको शोषण करते हैं, एक बदतमीजी है कव्वाली का। पहले लोग जो कव्वाली गाया करते थे वो जो है ऋषि मुनियों के ऊपर, पीर फकीरों के ऊपर, अल्लाह उसके रसूल के ऊपर, और जो है वो एक बताते थे कव्वाली के जरिए, एक मैसेज पहुंचाते थे समाज को कि देखिए हाँ ये मैसेज है, ख्वाजा मोइनुद्दीन ये कह रहे हैं चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और अल्लाह उसके रसूल के सामने और सीता वनवास और जो भी है भगवान कृष्ण भगवान राम की उनकी जो कथाएं हैं उनके बारे में समाज के सामने का आईना दिखाया जाता था।
जी जी।
अब आज उसके जमाने में वो सब चीजें नहीं है, आज जो है वो आज हमारा संस्कृत कहाँ, हमारा संस्कृत जो है हमारा कहाँ जा रहा है, लोगों को इस बात की फिक्र नहीं कि जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल जो है हमारे जो है संस्कृत से और हमारी धरोहर चीजों से बहुत ही दूर है, जो संस्कार है धीरे धीरे हमारा ये संस्कार खत्म होता चला जा रहा है। पहले की जो गायकी थी, पहले की जो कव्वालियाँ थी उसमें लोगों को, समाज को, देश को, दुनिया को जोड़ने का काम था, पैगाम जाता था।
बिल्कुल ठीक कहा रविस्ता जी, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा निसार साहब ने। आप भी तो एक इतनी लोकप्रिय कवित्री हैं और आप भी मंचों पर जाती हैं, तो आप भी ऐसे ही सोच रखती हैं, कई बार आपने मुझसे कहा भी है, आप क्या कहेंगी इस बारे में?
भावना जी, मैं इससे पहले कि कुछ बोलूं मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ।
जी बिल्कुल करें
निसार साहब से। निसार जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कहा आपके पिताजी की बहुत फेमस कव्वालियां रही हैं, जिसको बंबई की मधुर सरगम कंपनी ने जो है उसका कैसेट भी निकाला था। उस समय वो बिल्कुल गोल गोल चक्र की तरह जो है वो होते थे, आज तो बहुत छोटे में सीडी आ जाती है, ऑडियो कैसेट आ जाते हैं। यही नहीं बल्कि आपके पिताजी की कव्वाली आकाशवाणी लखनऊ से भी प्रसारित हुई थी। आपके पिताजी की तीन कव्वालियां बहुत ही मशहूर रही, जिसमें एक था सीता वनवास की, राजन जी ने सीता को जी को देखा, सीता को वो स्वयंवर का जो समय था उसकी कव्वालियां थी। जाहिर है कि कव्वाली ज्यादातर मुसलमानों के घरों पर ही होती रही होगी, ठीक है, और या फिर जो है वो आस्थाने पर होती रही होगी, दरगाहों पर होती रही होगी।
जी जी।
मजमू में भी ज्यादा मुस्लिम लोग रहते रहे होंगे। ऐसे समय में आपने देखा होगा कि जब आपके वाले साहब भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम पर कव्वाली गाते थे, तो कभी किसी मुसलमान किसी मौलवी ने इतराज किया हो, कोई ऐसा वाकया याद हो आप?
जी नहीं, पहले लोगों में इतनी मोहब्बत थी कि हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से मिल के इतना सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था उनको, कभी इस बात पे नहीं सिर्फ एक भाई परिवार के तरह थे, अब वो सब सुनते थे, वो चाहे सीता वनवास हो, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन पे हो, अल्लाह उसके रसूल पे हो, सब लोग मिलजुल के कितना ज्यादा भाईचारा था और बहुत अच्छी तरीके से सुनते थे।
अच्छा, कभी ऐसा कोई फतवा हुआ हो आपके पिताजी पर कि वो इस तरह से कव्वाली गा रहे हैं, म्यूजिक के साथ भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं दरगाहों पर, ऐसा ऐसा कुछ कभी हुआ उनके साथ?
नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।
लाइब्रेरी ये माना जाए कि आपके पिताजी के समय ये ना तो फतवेबाजी थी ना तो ये इस तरह की कोई नफरतें थी। निसार साहब
जी, जी नहीं नहीं, उस टाइम पे इतनी ये सब नहीं थी, मैं जो जो ये उस टाइम पे ये सब नहीं थी, वहाँ पर बड़ा मोहब्बत था, एका था। हमारे पिताजी जन्माष्टमी वगैरह में भी जो है तमाम जिले के और शहर के माने सम्मानित लोग बुलाते थे और कहते थे कि भाई रज़ाक साहब के बगैर ये जन्माष्टमी को जो सीता वनवास गाते हैं ऐसे तो जिले में कोई गा ही नहीं पाता था, लोग खड़े रहते थे कि भाई रज़ाक साहब को लेके चलो, तो बड़ा एक अच्छा लगता था कि सब लोग मिलजुल के और एक सारी जो है सारी सारी कौम के लोग मिलजुल के एक अच्छा सा प्रोग्राम करते थे, समाज को जोड़ने का काम करते थे और तमाम जो है भगवान राम के बारे में और जो है बड़े बड़े वली कुतुब बुजुर्गों के बारे में संगीत के जरिए और कव्वाली के जरिए पैगाम मैसेज पहुंचाते थे।
जी भावना जी
जी मैं ये कह रही हूँ शबिस्ता जी कि इस तरह अगर सोचा जाए तो हम समय से आगे जाने की जगह फिर तो हम पीछे गए हैं बहुत।
हम ये कहना चाहते थे कि आप हमसे जो जानना चाहती थी वो निशान साहब के जवाब में छिपा हुआ है।
बिल्कुल
बात कही थी कि जो इस्लाम था उसको तो हम मान ही नहीं रहे, उसकी जगह पर एक नए इस्लाम के दर्शन हो रहे हैं। आप समझे आज जो है अगर कोई गा दे कहीं बैठकर दूसरे दिन फतवे आ जाएंगे।
बिल्कुल ठीक कह रही।
तो आप ये मानिए ना कि ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है ये सब फतवेबाजी जो है, ये सब फतवेबाजी अपना क्या बोलेंगे कि आप ये समझ लीजिए कि अपना प्रभुत्व इस्लाम पर जमाने के लिए ये मौलवियों की देन है।
बिल्कुल ठीक कह रही है। कलाकार को जो लिबर्टी मिलनी चाहिए वो इसका मतलब आज के समय में मिलती ही नहीं है
जी। हम कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं, हमको तो ये लगता है कि बीता हुआ कल हमारे आने वाले कल से कहीं बेहतर था।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। लता जी को देखिए अभी कुछ दिनों पहले वो हम सब कुछ छोड़कर चली गई, पहले तो हम उनको ही श्रद्धांजलि दे हुई हम लोगों के बीच में से चली गई, और उनको ही देखे तो नौशाद साहब ने उनको इतना आगे बढ़ाया, अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो गुरु की तरह ही थे वो भी उनके, तो ऐसा कुछ भी नहीं था पहले तो। ऐसा मुझे नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ चलता रहा हो, और आजकल हर जगह यही सब हो गया
जी। तो चलिए आगे की कहानी जाना जाता है भावना जी की निसार साहब।
हाँ, आगे की कहानी एक तो मैं इनसे ये भी जानना चाहूंगी शबिस्ता जी कि जैसे कि इतने मशहूर कव्वाल अब्दुल रजाक साहब के बेटे तो इन्होंने उसी विरासत को क्यों नहीं आगे बढ़ाया, हम लोग इनसे ये भी जानना चाहेंगे।
हाँ जी बिल्कुल
बताए निसार साहब
जी बताइए।
हाँ जी मैं ये कहना चाह रही थी आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके पिता इतने प्रसिद्ध कव्वाल थे अब्दुल रजाक साहब, तो आपने उनकी विरासत को क्यों नहीं आगे बढ़ाया, मतलब कव्वाली विधा में क्यों नहीं आप अपनी आपने रोजी रोटी भी उसी दिशा में ढूंढी और उसी को अपना सब कुछ जरिया बनाया, आपने अलग बॉलीवुड में जाकर और स्टेज शोज किए और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने कदम रखा, लेकिन आपने कव्वाली को क्यों नहीं अपनाया।
देखिए एक्चुअली कव्वाली का सिलसिला ये था कि वाली साहब जो है हमारे उस जमाने कव्वाली के सुनने वाले लोग थे और समझते थे, क्रेज था, लेकिन उसके बाद में फिर कव्वाली का क्रेज धीरे धीरे कम होता चला गया और वाली साहब भी जो है मुफलिसी की हालत में आ गए, और ये सब देख के और मेरा दिमाग भी जो है बचपन से ही मैं रफी साहब के गाने सुनता था, तो मेरे दिल में ये था कि मैं बॉम्बे जाऊँ और मैं बॉम्बे जाके मैं भी गूँ सिंगिंग मुझे पसंद, क्योंकि जो पहले के गाने बनते थे वो ऐसे बनते थे कि उस गानों से के परिवार को जोड़ने का एक समाज को दिशा की तरफ ले जाने का उसी की लालच में मैं बॉम्बे काम के सिलसिले में गया और मैं काम के सिलसिले में गया और मेरी मुलाकात स्वर्गीय रविंद्र जैन जी से हुई जी। और मैंने उनसे बताया कि मैं एक संगीत परिवार से हूँ कव्वाल घराने से हूँ, तो उन्होंने अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया और कहा आइए हमारे यहाँ, फिर मैं उनके यहाँ गया और उनसे सलाम दुआ किया और करने के बाद में धीरे धीरे हमारा आना जाना हो गया। उसके बाद मैंने उनसे कहा रविंद्र जैन जी दादा मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी संगीत की शिक्षा पूरी आपसे लूँ, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो बिजी रहता हूँ आप देखते हैं, उस वक्त रविंद्र जैन जी का बहुत उरूस था, उनकी बहुत सारी फिल्में आ रही थी तो वो बिजी रहते थे, संगीत की शिक्षा किसी को नहीं दे पाते थे, तो हमसे कहने लगे कि भैया देखिए हम आपको संगीत की शिक्षा इसलिए नहीं दे पाएंगे कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं, आप देखते हो तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान आपके पास जाए जो सोनू निगम को सिखलाया, सोनू निगम को उस्ताद
जी जी।
तो मैंने कहा देखिए उस वक्त मेरे पास बॉम्बे में ना रहने का ठिकाना था ना खाने का ठिकाना था, तो इस हालात की वजह से मैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब के पास नहीं जा पाया, मैंने कहा दादा जो भी हूँ मैं आपसे ही सीखूंगा, तो बोले ठीक है, तो वो मुझे थोड़ी बारीकियां बताते थे कि ये ऐसा गलत है ऐसा ये सही है, ये उतार है ये चढ़ाव है ये जेर है ये जबर है, और थोड़ी बहुत वो जो उनसे टाइम मिलता था तो हमें कागज पे लिख लिया करते थे, इसी से मुझे गाने की ललक पैदा हुई, और उन्होंने इस बात पे कहा था कि तूने अपने आप को पहचाने नहीं, एक प्रोग्राम में उन्होंने चित्रकूट के प्रोग्राम में मुझसे कहा था, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने दादा ने कहा कि आपने मुझे दादा ने कहा कि बेटा तूने अपने आप को पहचाना नहीं अभी भी सवेरा दिशा की तरफ जाओगे, मुझसे कहा था जी। तो दादा के साथ मैं रह के उनके साथ मंच पे स्टेज शोज प्रोग्राम और रिकॉर्डिंग वगैरह मतलब आना जाना सब जो है पूरा सब उनका मेरे जीवन की चिंगी की हाँ वो हमारे गुरु थे, पिता सम्मान भी थे, बड़े भाई की तरह भी थे, हमारे अपनी सारी बातें हमसे कहा करते थे, हम उनका सारा काम जो है देखा करते थे बेटे की तरह का औलाद की तरह। और मैंने कभी भी जिंदगी में जब तक वो जिंदा थे हयात थे मैं उनसे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, मैं हमेशा उनसे पीछे ही था किसी काम में आगे बढ़ बड़ा अदब एहतराम। और वो हमें बहुत मानते थे, एक परिवार की तरह हमारा जो है सिस्टम था। एक रायबरेली जब रविंद्र जैन जी आए उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि निसार भाई हमारे एक परिवार के सदस्य हैं, हमारे बेटे हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।
कितना बड़प्पन था उनके अंदर।
हाँ, इतना बड़प्पन रविंद्र सर महान शख्सियत थे,
गुणी थे। निसार साहब जैन जो है वो अपने धर्म के बहुत आस्थावान होते हैं और उनके धर्म के कुछ नियम भी होते हैं। एक आपकी इस पूरी कहानी में जो सबसे ज्यादा रोमांचक पहलू ये है कि इंडस्ट्री में तमाम जाहिर है उस समय कलाकार भी थे, मुस्लिम कलाकार भी रहे होंगे, दिलीप कुमार जी चढ़ती हुई अपनी उनकी भी मार्केट थी, ठीक है, और मधुबाला जी थी, तमाम मुस्लिम कलाकार थे, ठीक है, लेकिन जो है इसके बावजूद आपका एक हिंदू के घर जाना
जी।
और वो हिंदू जो ऐसे संप्रदाय से बिलोंग करता था जो अपने धर्म के प्रति बहुत आस्थावान रहते हैं, उनका आपको गले से लगाना, अपने घर में रख लेना, क्या कभी कोई ऐसा मौका आया कि जब आपको ये लगा हो कि दादा या उनके परिवार का कोई सदस्य आपको अलग समझ रहा हो?
नहीं नहीं कभी नहीं, वो बिल्कुल अपने घर में खाने पीने के लिए साथ एक ही बर्तन में कोई भेदभाव नहीं, किसी चीज का कोई भेदभाव नहीं। हम जो है दादा के सुबह में 10 बजे जाते थे और कभी 7 बजे कभी 8 बजे कभी 10 बजे कभी जिस हिसाब से काम होता था उसी हिसाब से मैं जाते थे, और शाम को कभी 10 बजे कभी 11 बजे कभी 12 बजे कोई कोई दिन 2 बजे भी रात में जो है वहां से निकलना होता था, क्योंकि ये दादा लिखा पढ़ी किया करते थे, कंपोज राइटर थे, गीतकार थे, गायककार थे, सब कुछ थे, तो इसीलिए कभी भी भेदभाव नहीं किया उन्होंने साथ में घर में। हम जो भी हुआ फौरन निसार के भैया के लिए ये लाओ वो लाओ, मतलब एक घर के अंदर कभी भेदभाव के वो नहीं थे। जो कि जैन जो है कि लहसुन प्याज भी नहीं खाते, ये बात सच है कि वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, लेकिन हमसे कभी भेदभाव नहीं किए, एक परिवार की तरह मुझे जो है अपने गले उन्होंने मुझे लगाया।
भावना जी एक बात और भी यहाँ पर गौर की बात है, अक्सर जब हम लोग कट्टरवादिता की बात करते हैं, नफरतों की बात करते हैं, तो हमारे राजनेता तुरंत कह देते हैं ये नफरतें तो विभाजन के बाद आ गई थी
जी।
आप पर करें कि ये जिस समय का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि 66 में इनका जन्म हुआ
जी,
बंटवारा हो गया था,
बिल्कुल बंटवारा हुए काफी समय बीत चुका था उस समय तक,
काफी समय बीत चुका था, तब भी हमारे देश में मुहब्बत थी। यानी ये आरोप लगाना कि नहीं बंटवारे के बाद जो है विभाजन के बाद जो है हमारे देश में नफरतें आई, ये गलत है,
बिल्कुल ठीक है।
सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो देश में नफरतें आई, ये जो देश में जो हम मानसिक रूप से विभाजित हो रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ सियासत है,
बिल्कुल
शायद इसीलिए फैयाज रायबरेलवी साहब कहते हैं कि यकीनन प्यार की राहों में दुश्वारी नहीं होती, यकीनन प्यार की राहों में दुश्वारी नहीं होती, सियासत तेरी चालों में मकरी नहीं होती, और शजर तभी लगाना जब जमीनों को परख लेना, शजर तभी लगाना जब जमीनों को परख लेना, हर एक मिट्टी की फितरत में वफादारी नहीं होती।
बहुत सुंदर
निसार भाई की कहानी इस बात का प्रमाण है कि विभाजन के बाद नफरत नहीं आई, नफरत राजनीति से आई है, और वो भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हमारे राजनेता ही रहे, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं,
बिल्कुल
पार्टी नहीं हो इससे हमें कोई मतलब,
बिल्कुल ठीक कहा,
किसी पार्टी के कारिंदे नहीं होते, और सभी नेताओं को भावना जी मैं एक ही थाली के चटपटे मानती
हूं, बिल्कुल ठीक कह रही
हूं, हम में सब नंगे,
बिल्कुल ये कहने में कोई संकोच होना भी नहीं चाहिए
जी। तो अच्छा ये बताइए निशान जी कि आप रविंद्र जैन जी विदेश भी जाते थे, ठीक है, और विदेश जाना कहीं ना कहीं हर कलाकार का ख्वाब हुआ करता है, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वो आपको भी कभी बाहर ले गए विदेश अपने साथ?
देखिए रविंद्र जैन जी के प्रोग्राम जब एक टाइम था जब रविंद्र जैन जी राम तेरी गंगा में भी फिल्म जब रिलीज हुई उससे पहले दादा
थोड़ा आपकी आवाज कम आ रही है।
हेलो, हाँ हेलो,
थोड़ा सा पास करके बोले
जी। हाँ हेलो हेलो,
हाँ जी बोले,
हाँ जी बोले।
हाँ तो रविंद्र जैन जी की जब फिल्म राम तेरी गंगा मैली रिलीज हुई थी
जी
उस टाइम पे रविंद्र जैन जी का प्रोग्राम इंडिया के बाहर बहुत शोज हुआ करता था। बीच में रविंद्र जैन जी के एक अवार्ड के लिए दुबई जाना था उनको
जी।
अवार्ड के सिलसिले में तो हमसे बोले कि तुम चलोगे, तो हमने कहा दादा हमारा पासपोर्ट तो इस वक्त एक्चुअली हम भूल गए थे घर पे रायबरेली में, तो हमने कहा कि रायबरेली में, बोले क्या वहां क्यों रखा, अरे भाई आपको दुबई चलना था अवार्ड हमको वहां पे अवार्ड के लिए चलने आपको भी ले चलते हैं, तो हमने कहा दादा आप तो वहां रख क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं जो है अपने जितने भी कागजात डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखा करो और जो भी हमारे इंडिया के बाहर प्रोग्राम शोज हुए हैं वो हेलो
हाँ जी बोले आ रही है।
जो भी हमारे इंडिया के बाहर प्रोग्राम शोज हुए तो जो हमारे जैसे कि हमारे ग्रुप्स वहाँ पर प्रोग्राम स्टेज शोज करते हैं उन लोगों ने हमको बुलाया, तमाम जो है सिंगापुर है, कुआलालंपुर मलेशिया है, मलेशिया नगरी सभा है और ब्रुनाई दारुसलाम है और साउथ अफ्रीका है, कैप्टन जनबंस है, सनसिटी है, सफारी, इन मुल्कों में तमाम जो भी उभराट के मुल्कों में गए, तो एक अदरवाइज म्यूजिकल ग्रुप होता है तो वो यहाँ से आर्टिस्ट को सिलेक्ट करता है कि भाई चलेंगे आप, क्योंकि वो मतलब ये कहते हैं कि कम बजट में इनको कम पेमेंट दे देंगे
जी।
तो ये हाँ अच्छी आवाज है, अच्छे कलाकार है, इनको लेके चलो। तो इसी सिलसिले में हमारा इंडिया के बाहर कई मुल्कों में, बल्कि हमने ज्यादा को भी बताया तो बोले ठीक है दो पैसा मिल रहा है कहीं भी मिल रहा है आप जाओ, मना भी नहीं है। एक जब हम साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो यहाँ पे दादा को एक अवार्ड मिलना था, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हमारे जो हैं
जी जी।
तो हम लोग चित्रकूट के प्रोग्राम में तो बोले कि राष्ट्रपति का अवार्ड मिलने वाला है और निसार भाई आइएगा, तो हमने कहा दादा हमारा अफ्रीका जाना है, तो बोले कि जैसा तेरा दिन चाहे, तो हमने कहा दादा टिकट सब हो गई है वहां पे जाना है एक हफ्ते के लिए प्रोग्राम है तो क्या चलेगा। तो फिर मैं अपने दादा कहते ना जाओ, फिर हम साउथ अफ्रीका चले गए, तो एक हफ्ते का प्रोग्राम था वही जहाँ पे। तो दादा को यहाँ मतलब कुछ ऐसे भी प्रोग्राम चांस मिले, कुछ ऐसे भी प्रोग्राम हुए जिसमें हम दादा के साथ जिंदगी शरीक नहीं हो पाए, कि मतलब जो है बहुत सारे भी जैसे कि हम दादा का प्रोग्राम भी ऐसा भी होता था कि दादा का भी प्रोग्राम लगा हुआ है, कुछ हमने जो हो उस डेट में हमको उससे पहले नहीं मालूम था, हमने किसी से एडवांस ले लिया कह दिया चले गए, तो ऐसे भी बहुत सारे चांस आए। लेकिन दादा कभी इस बात को कहते नहीं थे, कहते ठीक है मैनेज कर लेते थे
जी जी, बहुत सरल व्यक्तित्व था उनका।
हाँ बहुत महानता है, ये सोचिए आप कि एक अनजान आदमी परदेश से आता है उसको गले से लगाते, ना केवल गले से लगाते बल्कि उसको इस काबिल बनाते हैं, और काबिल बनाने के बाद भावना जी मतलब उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते
जी, बिल्कुल
उड़ान जो है वो कला के उन्मुक्त आकाश में उड़ना चाहता है, तो रविंद्र जैन जी उसको आगे बढ़ाते हैं। अब कहाँ ऐसे लोग हैं, बार बार मैं कहूंगी कि नमन मेरा रविंद्र जैन जी को, ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसी पुण्य आत्मा को, आज उनके बारे में सुनकर कहीं गर्व होता है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी कि भावना जी जमुना प्रसाद उपाध्याय जी ने लिखा है अपने शेरों में
जी,
कि एक हम नई पौध लगाने में अड़े हैं, एक हम नई पौध लगाने पे अड़े हैं और बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते, शायद ये उनके दिल का दर्द था। लेकिन आप देखिए कि रविंद्र जैन जी का व्यक्तित्व, मुझे लगता है कि ये शेर जो है कि नई पौध लगाने का, कहीं रविंद्र जैन जी जैसे लोगों के लिए ही जमुना प्रसाद उपाध्याय जी ने लिखा कि ये वो बरगद नहीं है जो अपने नीचे पौधों को पनपने नहीं देते, बल्कि वो पीपल है जिनकी छाया में अनगिनत वृक्ष जो है पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं। मैं निसार को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक बहुत रोमांचक चर्चा जो है वो चल रही है यहाँ पर।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने।
हाँ अब मैं सोचती हूँ भाव जी की निसार साहब से ये भी जो है एक प्रश्न कर लिया जाए
जी।
निसार साहब हम लोगों ने कव्वाली से ही शुरुआत की थी, तो सोचती हूँ समापन भी मैं
अभी एक बात मैं इससे और भी एक उनका संस्मरण जानना चाहूंगी कि रविंद्र जैन जी ने लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में भी संगीत दिया था, उसके संगीत निर्देशक थे, तो कभी निसार साहब को जाने का अवसर मिला रामायण के सेट पर, उनका कोई अनुभव अगर वो हमसे शेयर करना चाहे तो।
जी जी निसार साहब आवाज सुन रहे हैं आप?
जी जी
कुछ कहना चाहेंगे रामायण धारावाहिक के बारे में?
दादा के साथ एक्चुअली जो पहले जो रामायण बनी थी बहुत पहले और एक बाद में जो है दादा ने कंपोज किया, तो एक साई बाबा के भी साई बाबा के सीरियल दादा अरविंद जैन जी का संगीत है साई बाबा ने भी
जी जी।
तो दादा के साथ तमाम प्रोग्राम में और तमाम शेडो पे हमारा बराबर जाना होता था साथ में, लेकिन कभी फीलिंग दादा फील नहीं करते तो ना हम फील करते तो ना दादा, एक एक अपने बेटे की तरह एक छोटे भाई की तरह मुझे हाथ पकड़ के ले जाते थे। और जब ये जब ये मोती सागर आनंद सागर ये हम जो इनका जो सीरियल था साई बाबा में जिसमें
रविंद्र जी जी
दिया, मुझे वो दिन याद है कि हम लोग जो है शाम को रिले होना था वो प्रोग्राम और हम लोगों को दादा को संगीत का उसको बताना था और बारिश के हम ही है, तो उसके बाद में एक साथ छाता पकड़े थे हम बाजा पकड़े थे दादा बाजा थे और पानी बरस रहा है और हम लोग जो है वो भूल नहीं पाएंगे वो दिन कि देखिए काम की लगन लेके दादा को कि मतलब भीग रहे हैं उसके बाद भी जो है वो धुन उसको सेट करके बता रहे हैं कि देखिए ये ऐसे कैसा था बाजा में क्योंकि शाम को डिले करना है
जी।
निशा साहब मैं थोड़ा सा भावना के उस प्रश्न की ओर ले जाना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा विस्तृत रूप में आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि आज बहुत ही परिवेश बदल गया है, कल आप कभी ना कभी रामायण के सेट पर अवश्य गए होंगे, तो जब आप भगवान श्री राम को देखते थे तो मतलब ये देख करके आप आगे बढ़ जाते थे कि नहीं दूसरे धर्म की बात हो रही है, या कभी आप बैठते थे देखते थे क्या भाव आते थे आपको भगवान श्री राम को देखकर?
जी ये तो जानना चाहेंगे हम लोग।
जी एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा लगता था कि नहीं भाई ये जो भगवान राम का जो किरदार कर रहे हैं और ये जो भगवान राम का किरदार कर रहे हैं और वाकई ऐसा है कि ये समाज को एक मैसेज जा रहा है कि नहीं देखिए ये कहानी है ये स्टोरी है, तो उसी भाव से लोग उसी भाव से उसी नजर से उनको देखते थे तो हम भी उन्हीं उसी नजर से उनको देखते थे
जी, यानी मतलब श्रद्धा के भाव से देखते थे।
हाँ,
कलाकारों को भी जो भगवान श्री राम का अभिनय कर रहे थे।
नहीं सविता जी हम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि जब ये रामायण देखते थे उस कथा को सुनते थे सीरियल में उसको अपना कलाकारों को उन चरित्रों को जीते देखते थे तो आपको क्या अनुभव होता था, आपको लगता था कि एक ऐसी कहानी है या क्या भाव आपके मन में आते थे या भगवान राम के प्रति श्रद्धा का भाव आता था आपके मन में?
देखिए इनकी अक्सर बताया करते थे कि निसार ये जो है ये सब जो है ये भगवान राम भगवान कृष्ण ये सब पूरी उनकी बातें बताया करते थे, वही कहानी को समाज को बताना और दिखलाना और उसी को आगे बढ़ाने का काम प्रवीण साहब ने जो है तमाम दुनिया में।
हमारा प्रश्न निसार साहब हम ये जानना चाहते हैं कि जब कभी भी आप रामायण देखते थे तो क्या भगवान श्री राम के प्रति आपके मन में श्रद्धा आती थी कि ये व्यक्ति इतना महान था?
जैसे से कहानी लगती थी
जी जी नहीं बिल्कुल ये महान था कि महान है वो और जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक वो महान है और ये एक वो हम लोग तो अक्सर बचपन में भी जो है हमारे अक्सर वो मंच हुआ करता था ना सीताराम का
जी जी
हाँ तो उस मंच पे भी जो है अक्सर जाते थे और देखते थे तो वही भाव से देखते थे कि नहीं ये वाकई जो भगवान राम का जो किरदार कर रहे हैं और जो वाकई
नहीं, जो हम अभिनय की बात नहीं कर रहे हैं आप समझिए हमारी बात, हम अभिनय करने वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब आप ये देखते थे रामलीला तो भगवान श्री राम के प्रति आपके मन में क्या विचार आते थे कि ये व्यक्ति तो महान था कि नहीं था, क्या उसके त्याग से प्रभावित थे कि नहीं?
उन्होंने भगवान राम जो है महान थे और जो है महान थे और सत्य की लड़ाई उन्होंने लड़ी और सत्य पूरी दुनिया को बताया और सत्य ही पूरी दुनिया में रहेगा।
बात अच्छा
शाबिस्ता जी मैं आपको बताऊं कलाकार का कोई जाति कोई धर्म नहीं होता ये बात तो निश्चित है, जो सच्चे कलाकार हैं और जो सच्चे नहीं है वहीं पर ये लड़ाई झगड़े और मजहब की बातें और सांप्रदायिकता ये सब आती है।
जी जी अब हम एक बात और कहेंगे यहाँ पर भावना जी, मैं कुछ चाहती हूँ कि कव्वाली से आपने प्रश्न शुरू किया था, तो इस साक्षात्कार को भी हम कव्वाली पर ही समाप्त करें।
हम लोग इनसे सुनना चाहेंगे अब्दुल रजाक साहब की वही सीता बनवास या जो भी सुनाना चाहें।
पहले हमारा एक प्रश्न, क्योंकि भावना जी काफी देखिए जैसे भोजपुरी भाषा है आज उसके लोकगीत अश्लीलता की ओर बढ़ गए। निसार साहब
जी,
कव्वाली आस्थानों पर होती है आज, ठीक है, दरगाहों पर होती है आजकल, कव्वाल जिस तरह की कल वो जो है कव्वालियां परोस रहे हैं, मतलब जिसमें कहना चाहिए द्विअर्थी संवाद होते हैं, आप समझ रहे हैं, और बहुत गंदे संवाद होते हैं, क्या कहेंगे ऐसी विधा के बारे में, और वो भी खासकर तब जब ये किसी भी दरगाह पर हो रही हो तब।
देखिए जो आजकल के कव्वाल है ये कव्वाली ना गा के, मैं तो इनको सब साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि ये भड़ेती करते हैं और ये उसमें गाली बकते हैं, समाज को बड़ा ये किधर लेके जा रहे हैं ये, मैं तो कहता हूँ कि इनको बिल्कुल मना कर दिया जाए कि इस तरह के प्रोग्राम समाज में ना हो, और जिससे कि समाज को नुकसान पहुंच रहा है। पुअर कव्वालियाँ, पुअर बड़े बड़े बुजुर्ग दीन वली अल्लाह कुतुबों की मज़ारों पे इस तरह के बिल्कुल गलत है हर एतबार से गलत है। उनकी तो शान में पढ़ना चाहिए, अल्लाह उसके रसूल के शान में पढ़ना चाहिए, खुदा के शान में, बुजुर्ग दीन वली कुतुबों की शान में पढ़ना चाहिए, और ये सब तमाम फजूल पढ़ते हैं ये कव्वाली के नाम पे।
इतनी अजीब बात है कि हमारे मौलाना लोग जो है निसार साहब उस्ताद जाकिर हुसैन को फतवा दे देते हैं, अमजद अली खान को फतवा देते हैं, लेकिन आज तक इन कव्वालों के खिलाफ वो नहीं बोले।
नहीं बोलना चाहिए,
बहुत ही प्रासंगिक सवाल आपने किया शबिस्ता जी।
जी जी, इनको बोलना, तमाम हमारे आलिम उलमाओं को भी,
जो कला है उस पर हो रहे हैं, और जहाँ कला के साथ खिलवाड़ है वहाँ कोई फतवा नहीं।
हाँ, तो इनको तमाम हमारे आलिम उलमाओं को बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि कव्वाली जो है वो एक ऐसी है, और ऐसी जो तमाम चीजें कहते हैं कि बुजुर्ग दिन वली अल्लाह कुतुब अल्लाह उसके रसूल शान, और इनकी उसमें पढ़ी जाए, बाकी जो ये न गाया जाए, जो कि खराब है, जो समाज को बुराई की तरफ ले जा रहा है, जो समाज को एकदम नीचे की तरफ ले जा रहा है, इनको कहना चाहिए। क्योंकि हमारी भी बीच में कुछ मौलानाओं से, हमारे आलिम उलमाओं से मुलाकात हुई थी, तो मुझसे पूछने लगे कि निसार भाई आप बताइए कहाँ क्या कर रहे हैं, तो हमने बताया कि बॉम्बे में थे, इस वक्त तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, दर वक्त अभी कोरोना काल से सब बंद हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि कव्वाली जो है, हमसे पूछने लगे, कहने लगे कि गाना और कव्वाली ये आप गाते हैं तो ये मतलब हराम है। तो हमने फिर उनको कव्वाली के, हमने कहा कि हम आपको दो लाइन सुनाए, कहीं सुनाइए, तो मैंने कहा देखिए सुनाए, हेलो
जी हाँ बिल्कुल सुनाए, बिल्कुल सुनाए।
हाँ, तो मैंने उनको मैंने सुनाया, हमने कहा देखिए मैं अल्लाह उसके रसूल की शान में बड़ाई कर रहा हूँ कि अंधेरे में दिल के चराग़े मोहब्बत ये किसने जलाया, सवेरे सवेरे इबादत का सौदा, अंधेरे अंधेरे मुनाफा कमाया, सवेरे सवेरे। तो फिर खुश हो गया कि हाँ ये तो बात सही है, मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूँ कि जब हम इबादत अंधेरे मोड़ के भगवान जी करेंगे खुदा की, तो उसके बाद हम दुकान पे जाएंगे तो उसका मुनाफा हमको सवेरे इबादत की हमने अंधेरे अंधेरे और प्रॉफिट हमने कमाया सवेरे।
वाह कितना सुंदर भाव,
बहुत
तो बहुत
जी।
तो फिर
और सीता वनवास पे भी आपसे हम सुनना चाहेंगे निसार जी।
जी जी जी, हम सीता जी, हम सीता वनवास पे भी सुना रहे हैं। ये कर भजन श्री राम का, भव बन से हट जाएगा, पार हो आवागमन के तू अगर पाएगा, गर नहीं दिल में लगन माला तिलक काम का, भाग के मुक्त रचा ले तू अमर हो जाएगा। मंदिर पे सुंदरी खड़ी मुक्ते डाले केश, नैन नीर बहावे मोरे पिया गए परदेश, बलम के बलम तुम तो हो गए हो, गुलरी के फुलवा बलम है तुम तो हो गए हो, गुलरी के फुलवा। अरे कोयल बैठी डाल पे गाए मेघ मना, याद पिया की जब जब आवे मेरा दिल धड़के हर बार, के बलम तुम तो हुई गेहूँ गुलरी के फुलवा बलम है, तुम तो हुई गेहूँ तू कहने लगे राम जी लक्ष्मण को बुला कर, जल्दी से खबर कर दो लाओ रथ को सजा कर, रथ खुद ही चलाना तुम सीता को बिठा कर, फिर आ न सके छोड़ो इतनी दूर ले जाकर, सखियों से गई मिलने कोई करना बहाना, लक्ष्मण जी आज्ञा पाके हुए बन को रवाना, घबरा के बोली सीता निकट वन में पहुँच कर, क्या पाप है कुछ मन में जो लाए हो यहाँ पर, बस इतनी बात सुनकर रथ को वहीं रोका, भैया के कहने से दिया हमने तुम्हें धोखा, बस कर दो क्षमा करता हूँ कर अपना जोड़ कर, सब जाने लगे लक्ष्मण जी सीता को छोड़ कर, कौनी खता पर रूठे हो भगवान भेद बता दो, कुछ भी तो लक्ष्मण मोरे नैन से अरे कुछ भी तो लक्ष्मण मोरे अरे मोरे नैनो से बरसे सवनवा, अरे के बलम तुम तो होई गयो गुलरी के फुलवा बलम है, तुम तो होई गयो, अरे जब से रूठे साजना पल भरना ही चैन, सूने बन में बैठ कर तड़पू हूँ दिन रैन, के मोरे बैया के ढक गए कंगनवा, अर बलम तुम तो होई गयो गुलरी के फुलवा बलम है, तुम तो होई गयो गुलरी के फुलवा, जंगल में भटकने लगी लो सीता बेचारी, रो रो के कहे छू गई सासू की दुआरी, अब जाए कहाँ भगवान सहारा नहीं कोई, इस वन में सिवा तेरे हमारा नहीं कोई, रोती थी मुँह को धोती थी अश्वन की धार से, पंछी भी वन में रो दिए उनकी पुकार से, तब तक कोई जिएगा घुट घुट के इस बन में, तब जाने देने चली सिया सोच के मन में, कुछ दूर जाने पर मिला गंगा का किनारा, जैसे ही चाहा कूद ने वाल्मीकि ने पुकारा, अयोध्या भी छूटी जनकपुर भी छूटा, दुनिया से अब मेरा नाता भी टूटा, सबके साजन हाथ से लौटे घर की ओर, लेकिन तुम्हारी आज तलक सांझ बनी ना हो, मोर नैनो से बरसे बलम तुम तो हुई गयो गुलरी के फुलवा बलम है, तुम तो हुई गयो जी। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा,
बहुत सुंदर सबिता जी, कितनी मधुरता थी इनकी इस रचना में।
भावना जी मतलब एकदम से आप सोच लो 70 साल पीछे हम लोग।
बिल्कुल 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 ठीक कहा, बहुत सुंदर। क्यों नहीं ये सब कलाएं आगे बढ़ती, हमारे सारे लोकगीत, ये नहीं कि हम खाली कव्वाली की बात करें, हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, भोजपुरी के गानों को देख लीजिए, अवधी के या किसी भी भाषा के देखिए, तो हर जगह पर यही द्विअर्थी संवाद और अश्लीलता यही सब हावी हो गई है, व्यावसायिकता हावी हो गई इन चीजों पर।
हाँ, बस मेन चीज जो है वो कहीं ना कहीं जो है ये सारी समस्याओं की जड़ राजनीति और ये अर्थ, दो चीजों ने समाज को चौपट कर रखा है
जी। अच्छा एक बात और भी हम इनसे जानना चाहेंगे, कुछ निसार जी बता रहे थे कि ये विदेशों में भी जाते थे जब अपने शोज करने, तो कहीं पर इनका कोई बहुत अच्छा अनुभव था शायद मलेशिया का, कुछ बताना चाह रहे थे आप, कुछ बताना चाहेंगे?
जी जी जी, एक्चुअली हमारा ब्रुनाई में भी प्रोग्राम हुआ, बंदश्री बगावन निगारा ब्रुनाई, दुनिया का सबसे रिच मुल्क ब्रुनाई में, तो हमारे वहाँ पे प्रोग्राम जो हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी में गाना गाते थे, लेकिन वहाँ के लोग हिंदी जबान तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी आवाज हमारी म्यूजिक को पसंद करते थे वहाँ पे।
बताइए।
तो बहुत सारे फिलीपीन इंडोनेशिया तमाम मुल्क के लोग थे, मैंने रफी साहब का वो गाना गाया आने से आए, उसके बाद बड़ी मस्तानी मेरी महबूबा, और बहुत पब्लिक ने पसंद किया
जी।
और इसी तरह मलेशिया में भी मैंने बहुत सारे रफी साहब के गाने, लता जी के और गाने गाए, तो बहुत लोग पसंद किया। फिर मैं एक बार कुआलालंपुर मलेशिया से, एयर एशिया से मैं कलकत्ता आ रहा था फ्लाइट कुआलालंपुर से, तो फ्लाइट उड़ी है, उसके बाद पानी चाय वगैरह जो भी हुआ, उसके बाद मुझे प्यास लग गई, तो मैं केबिन की तरफ गया, तो मैंने एक रोस्टर से पूछा, थोड़ी बहुत मुझे इंग्लिश आती, ज्यादा तो नहीं आती है, तो मैंने उससे थोड़ी बहुत, मैं मलेशियन वहां सीख गया था जैसे लिखा पड़ी में, तो मैंने उससे पूछा कि प्लीज मुझे सातु गिलास आयर, यानी कि मुझे गिलास पानी दीजिए उनकी जुबान में, सातु गिलास आयर। मैं पूछा कि बोले बोले तिरप्पा, यानी कि बिल्कुल पियो, तो हमने कहा बहुत बहुत शुक्रिया तिरमा काशी, मलेशिया में तिरमा काशी, शुक्रिया बहुत बहुत। तो उसने पूछा कि कहाँ से, तो हमने इंडिया मतलब, तो हमने कहा कि शायद अरे इंडिया, हम इंडिया से रहने वाले हैं, मतलब वहां से आए हैं कुआलालंपुर में प्रोग्राम, तो बोला तुम गांधी यानी कि गाते हो, हमने कहा यस, तो बोला कि सुनाओ, तो रफी साहब का गाना था तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा मैंने
जी,
बस इतनी खता और खता क्या, तो फिर हमने पानी पिया, उसके बाद में फिर उसको हमने कहा देखिए ये इंडिया का गाना है, दिया मोहम्मद रफी, दिया लामा लागू, यानी कि लामा लागू मतलब पुराने गाने, और उसको मलेशिया में बोलते लामा लागू।
तो आपने इतने थोड़े से दिनों में इतनी मलेशिया की भाषा सीख ली?
एक्चुअली जब मैं जाते थे तो पहले कापा कापी और कलम लेके बैठ जाते थे, किसके माने क्या होते, इसके माने क्या होते, लोग वहाँ से पूछ के लिख लेते थे, फिर कि उसको एक पानी के माने क्या होता है, तुम्हें के माने क्या होता है, किता के माने क्या होता है, आपा के माने क्या होता है, उस फटाफट कापी कलम लिख के हिंदी में लिखते रहते थे, उधर उनसे पूछते थे जो इंडियन आदमी रहते थे।
कितनी सीखने की ललक शाबिस्ता जी है, ये असली कलाकार होते हैं, बहुत अच्छा भैया बोले।
तो मैंने फिर उनके लिए कहा कि हाँ, तो फिर उसने जो है कहा कि सुनाइए एरोस्टेस में एयर एशिया की, तो हमने कहा कि तुम्हें तुम्हें तुझे देखा, यानी कि तुझे का मतलब किता भी कह सकते हो कमू भी कह सकते हो,
तो
दो दो नाम, ये मलेशिया की जुबान में एक माने के कैके, एक बोल के कैके माने होते हैं
जी जी।
तो मैंने उसको कहा कि सुनिए, तो उसने कहा सुनाइए, तो हमने कहा कि किता ले हत किता चिंता किता पूजा आकू चुक बिकित साला आपा आकू लागी सला आपा किता ले हत किता चिंता किता पूजा आकू चापाती आपा गा आँखों तेरा साउड़ा माई जुम्पा साया लगी इन्हीं सजा चिंता अड़ा किता ले हत किता चिंता किता पूजा आकू बस खता है मेरी और खता क्या।
एक लाइन इतनी हिंदी भी सुना दीजिए, मोहम्मद रफी साहब का बहुत प्रसिद्ध गीत है ये, एक लाइन अगर हिंदी आप सुना सके तो इसकी।
तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा मैंने बस इतनी खता है मेरी और खता क्या। तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा मैंने बस इतनी खता है मेरी और खता क्या। तुझे देख अनगिनत सालों से मेरी तुझसे एक पहचान है
आगले लग जाओ आकर बस ही इतना अरमान है तुझे देखा तुझे चाहो।
संगीत की कोई भाषा नहीं होती।
हाँ जी,
उतना ही मजा उस मलेशिया की भाषा सुनने में भी आया, उतना ही हिंदी में तो खैर रही है बहुत।
तो भावना जी मेरे ख्याल से काफी बात हो गई।
जी जी,
है
बहुत अच्छा लगा शबिस्ता जी, आपका भी आना और निसार साहब का आना तो फिर आज हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात हो गई। और हम यही चाहेंगे कि इस कव्वाली विधा को आप आगे लेकर जाएं।
जी बिल्कुल, आप लोगों का सहयोग होगा, समाज के सारे लोगों का सहयोग है, हम समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बस आप लोग हमारा हौसला अफजाई करें, हमको कंधे से कंधा मिला के हमारा सहयोग करें, हम समाज की दिशा की तरफ ले जाने का काम करेंगे, एक संस्कृत अपनी भारत धरोहर चीज को बरकरार रखेंगे, संस्कार को समाज की दिशा की तरफ ले जाएंगे, इस भारत मुल्क को एक अच्छे से एक समाज के तमाम दुनिया के सामने एक अच्छी तरीके से इसको पेश करना चाहते हैं, साहित्य संगीत के जरिए हम समाज को देश को दुनिया को जोड़ना चाहते हैं, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी।
बहुत अच्छे विचार है आपके, बहुत हम लोग सब आपके साथ हैं निसार साहब। और निसार साहब, शाबिस्ता जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे कलाकार जब चुभन के पटल पर आते हैं तो एक समा बंध जाता है, आज मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा मुझे लग रहा, और हमारे श्रोताओं को भी आप लोगों को सुनना बहुत ही अच्छा लगेगा।
हाँ भावना जी, और हम चाहेंगे कि हम लोग बहुत जल्दी, मैंने कहा कि आज के भी इंटरव्यू में तमाम बातें कहीं ना कहीं घूम फिर कर इस्लाम की ओर आई कि आखिर जो है वो इस्लाम कहाँ है जो मोहम्मद साहब ने चलाया था। तो मैं चाहूंगी कि इस विषय पर हम लोग जल्दी ही मिले और तमाम बातों पर विस्तृत चर्चा हो, हलाला पर, हिजाब पर, जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं उसको हम लोग दूर कर सके और देश को फिर से उसी प्यार और मोहब्बत के।
जी बिल्कुल, इस चर्चा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भ्रांतियां लोगों के मन में उनको हम दूर करें। बिल्कुल ठीक आपने कहा शाबिस्ता जी, चला जाए फिर मिलेंगे इस वादे के साथ, निसार साहब से भी, शाबिस्ता जी आपसे भी, आज के लिए हम लोग विदा लें।
जी जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
मिलते हैं।
हाँ जी, नमस्कार,
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।